कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु,
हे कृष्णा करुणा सिंधु,
दीन बंधु जगत्पते,
दीन बंधु जगत्पते,
गोपेश गोपिका कांत,
गोपेश गोपिका कांत,
राधा कांत नमोस्तुते,
राधा कांत नमोस्तुते,
तप्त कांचन गौरांगी,
तप्त कांचन गौरांगी,
राधे वृंदावनेश्वरी,
राधे वृंदावनेश्वरी,
विश्वभानुसुते देवी,
विश्वभानुसुते देवी,
प्रणमामि हरि प्रिये,
प्रणमामि हरि प्रिये,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
जय श्री कृष्ण चैतन्य,
प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर,
श्री अद्वैत गदाधर,
शिवासादि गौर भक्त वृंद,
शिवासादि गौर भक्त वृंद,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। सम उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज आप शुक्रवार के दिन समय निकालकर इस सत्संग कार्यक्रम में आए हैं। हम हमारे विशेष अतिथियों का भी स्वागत करते हैं जो आज हमारे बीच आए हैं, केडी शर्मा प्रभु और उनकी फैमिली जो मुसफा से आए हैं यहाँ पर, और पूर्णानंद प्रभु भी आज हमारे बीच में आए हैं। जय केशव प्रभु। एक्चुअली सभी भक्त स्पेशल भक्त हैं क्योंकि सब भगवान के द्वारा बुलाए गए हैं। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और मैं सबसे पहले गौरूप नरसिंह प्रभु का हार्दिक अभिनंदन प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा यहाँ पर आकर बोलने के लिए। हालांकि समय बहुत कम था, कल ही मुझे बताया गया। और जो सभी उपस्थित भक्त हैं, जो मेरे सीनियर हैं, सब उनका भी मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। सिद्ध गौरांग प्रभु, सतीसा गोविंद प्रभु, सच्चिदानंद गोविंद प्रभु और अन्य जो भक्तगण हैं वो, कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि मुझे कल पता चला शाम को कि परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज आज फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हैं कल। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। मैं एक लेक्चर पढ़ रहा था जिसके अंदर एक छोटा सा इंसिडेंस आया जिसमें परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बंगाल में कलकत्ता में एक प्रिंटिंग प्रेस में गए कुछ प्रिंट करने के लिए, कुछ पब्लिश करने के लिए। इवेंट टू द प्रिंटिंग प्रेस, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ प्रिंट हो रही है। तो वहाँ पर एक स्कूल जो छोटी कक्षा का होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, उसका एक पेपर था, तो वो भी उठा के उन्होंने देखा। और उस पेपर के ऊपर सबसे पहला प्रश्न था, तुम्हार की परिचय, बंगाली में था वो, तो ये सबसे पहला प्रश्न था उधर। तो ये एक्चुअली हमारे मनुष्य जीवन का सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कौन है। तो ये प्रश्न था, तुम्हारे की परिचय। जैसे महाराज वहाँ गए थे तो वहाँ पर वो टीचर भी आया था जिसने वो प्रिंट करने के लिए दिया था। तो उसको देखकर जयपताका का महाराज उनसे पूछने लगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम स्मॉल चाइल्ड। एंड ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि कोई ऐसा लिख सकता कि मैं सुरेश हूँ, मैं महेश हूँ, मैं अरुण हूँ, या मैं एक बालक हूँ, या फिर मैं इंडियन हूँ, या मैं बंगाली हूँ, इस तरह के सब आंसर। All these answers get full mark. तो बोला कि सारे के सारे मार्क को पूरे मार्क मिलते हैं। तो महाराज ने कहा अच्छा। फिर महाराज ने कहा कि अगर कोई लिखे कि मैं आत्मा हूँ या I am the soul, then he said zero mark. तो ये हमारी स्थिति है समाज की, कि जब शिक्षा दी जा रही है तभी इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो एनीवे, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर मैं भी, क्योंकि प्रश्न आ गया तो मैं यहीं पे उस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आज हम, क्योंकि समय बहुत कम था मन में एक इच्छा थी, ये गजेंद्र मोक्ष जो है वो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, तो इस पे बोलने के लिए तो मैंने जो अपने गुरु से और अन्य जो भक्त उनसे जो सुना है, और बहुत साल पहले शिक्षाष्टकम प्रभु ने क्लास दिया था, तो वो जो सब सुना है उसके बारे में रिपीट करने का प्रयास करूँगा। तो बताते हैं कि चलो बाद में बताऊंगा इसको और गजेंद्र मोक्ष के बारे में ये कहा गया है कि ये जो गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि रोज कोई उसे सुबह पढ़े तो इस जीवन में या इस संसार में फिर वो जन्म नहीं लेगा, वापस वो नहीं आएगा। और आचार्यों ने बहुत इस पे टीका की है और बहुत ही विस्तृत वर्णन में और विस्तृत रूप में गजेंद्र की स्तुति के बारे में उसका विश्लेषण किया है और उसको समझाया है। तो बताते हैं कि गजेंद्र ने जो स्तुति की है, जो प्रार्थना की है, उसमें से अगर एक प्रार्थना भी हमारे समझ में आ जाए और समझ के हम उसको अपने जीवन में उतार सके, दोनों इम्पोर्टेंट है, पहले तो समझ में आनी चाहिए और फिर उसको जीवन में उतारना चाहिए, अगर वो उतर जाए हमारे जीवन में तो जीवन सफल हो सकता है। तो कई गजेंद्र ने कई स्तुति की है, कई प्रेयर्स की है और श्रीमद् भागवतम में ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को दर्शाती है ये। तो इसमें से सिर्फ एक जो श्लोक है एक उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये पूछना चाहता हूँ कि गजेंद्र कौन है, कोई जानता है? हाथ ऊपर कीजिएगा, बोलिएगा मत एक साथ गजेंद्र कौन है, कौन जानता है? गजेंद्र इन हिज प्रीवियस लाइफ इन दिस लीला गजेंद्र वॉज एन एलिफेंट, द किंग ऑफ एलिफेंट, एंड इन हिज प्रीवियस बर्थ ही वॉज किंग इंद्रदुम्न। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस, ही वॉज किंग इंद्रदुम्न फ्रॉम विच प्रोविंस, वो कहाँ के राजा थे? तमिलनाडु। सो ही वॉज फ्रॉम तमिल, भागवतम में लिखा है तमिल के राज्य के थे और अपने पिछले जन्म में बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। और एक बार एक्चुअली उन्होंने अपना घर बार सब त्याग करके एक एकांत जगह में चले गए थे और वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो अगस्त्य मुनि आए और अगस्त्य मुनि का अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर सके, तो अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया, कहा कि तुम पशुवत व्यवहार कर रहे हो, जाओ पशु बन जाओ, जाओ हाथी बन जाओ। तो वो हाथी बन गए। तो श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली बहुत विस्तृत वर्णन आता है पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि उस पूरे वर्णन को यहाँ पर प्रस्तुत करें, लेकिन बताते हैं कि त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत के बारे में बहुत ही विशेष रूप से वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में, एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेट किया है। और बताते हैं कि ये इसको त्रिकुट कहते हैं क्योंकि इसकी तीन चोटियां थी। तो ये जो तीन चोटियों का जो ये पर्वत है, इस पर्वत पर गजेंद्र रहते थे और ये जो पर्वत है वो क्षीर सागर के तट पर विद्यमान है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो कई बार ये जो वर्णन हम अगर पढ़ते हैं, जैसे मैं एक दो श्लोक पढ़ना चाहूंगा तो हमको समझ में आएगा कि उसका वर्णन है। बताते हैं कि त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है, यह 10,000 योजन और 80,000 मील ऊंचा है, चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण अत्यंत रमणीक स्थान है। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई 80,000 मील है। इसकी तीन प्रमुख चोटियां हैं जो लोहे, चांदी और सोने से बनी है, सारी दिशाओं और आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी है जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं तथा झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है, इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं को सुंदरता बढ़ाता है। और उसमें लिखा है कि उच्च लोक के वासी सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि वहां पर क्रीड़ा करने के लिए जाते थे। और आगे जो वर्णन है उसमें लिखा है कि त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ पर सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते थे। हमारे यहाँ पर कभी कभी उगते हैं और कोई कोई ऋतु में उगते हैं। इसमें मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्रवेशस, पियाल, पनस, आम, आम्रतक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उन्नम्बर, प्लक्ष, बरगद, किंगशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। जहां पर पीच मर्द, कोविदार, सरल, सूरदारु, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभय तथा आम्लकी फल थे। इस तरह का बहुत वर्णन है, अगर पढ़ते जाए तो आधा घंटा चला जाएगा, पर इस तरह का वर्णन किया है। तो कभी कभी ये जो वर्णन हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो उसको देखकर कोई सोचता है, सामान्य व्यक्ति सोचता है दूध का भी सागर होता है क्या, क्योंकि हमने खाली पानी का सागर देखा है, दूध का सागर नहीं देखा है। तो सोचते दूध का भी सागर होता है क्या। तो एक व्यक्ति, एक भक्त ऐसे एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उस लेक्चर के बाद में एक व्यक्ति जो नया था वो आके प्रश्न पूछने लगा, अरे दूध का भी सागर होता है क्या। बोला हाँ होता है। बोला अरे कहीं दूध फट गया तो। और फिर वो समुद्र मंथन के बारे में बता रहे थे, तो बोला अगर उसमें थोड़ा दही डाल दिया तो क्या होगा, वो दूध जम जाएगा, और फिर मंथन करेंगे तो क्या बन जाएगी, लस्सी बन जाएगी। तो इस तरह के भाव आते हैं मन में ये सोच के, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी, ये जानते हैं प्रभुपाद अपने पुस्तक में कई बार लिखते हैं कि एक जो मेंढक, कुएं का मेंढक, अगर अटलांटिक महासागर के बारे में जानना चाहे तो कितना प्रतिशत जान पाएगा, वो तो नहीं जान पाएगा। तो हमारे को वो नॉलेज नहीं है वहां का, तो हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो बताते हैं कि त्रिकुट पर्वत जो था वो ऐसा रमणीय स्थान था जहां पर देवी देवता भी पिकनिक मनाने के लिए आते थे। सोचो कोई व्यक्ति पेरिस से दुबई में पिकनिक मनाने के लिए आता है अटलांटिस, तो ये कोई कह सकता है कि हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है क्योंकि पेरिस से लोग आ रहे हैं। तो हेवन से, स्वर्ग से लोग आते थे वहां पर पिकनिक मनाने के लिए। तो एक बार गजेंद्र ने सोचा कि सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, ये जो ऋतुमत नाम का जो सरोवर है उसमें मैं भी जाता हूँ पिकनिक मनाने के लिए। तो उसने अपने पूरे परिवार वालों को एक साथ लिया और कहा चलो हॉलीडे स्पॉट पर चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे। तो सारे के सारे लोग वहां पर गए और इस तरह का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब ये भागवतम का जो आठवां स्कंध है इसको पढ़िए, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से गजेंद्र चल रहा था। जब हाथी चलता है तो कैसे चलता है, गज की चाल वैसे भी मस्तानी होती है, बड़े मस्ती से चलता है वो। और गजेंद्र जो राजा था और बहुत शक्तिशाली राजा था, वो जब चल रहा था तो पूरा त्रिकुट पर्वत हिलता था और उसके हिलने की वजह से कई जानवर डर के भाग जाते थे वहां से, कोई उसके सामने नहीं आता था। इवन शेर, चीते, भालू, ये सब भी जो पावरफुल जानवर है वो सब भी गजेंद्र से डरते थे और डर के भाग जाते थे। तो बताते हैं गजेंद्र अपने वैभव के कारण इतना मदांध होकर चल रहा था कि उसको कुछ होश नहीं था, और उसके बीच में जो भी पौधे या फिर झाड़ वगैरह जो आ रहा था वो सबको उजाड़ता हुआ जा रहा था, रौंदता हुआ चल रहा था। और इस तरह से चलते चलते वो इस सरोवर में आया और सरोवर में आकर वहां पर जल क्रीड़ा करने लगा, वहां पर स्नान करने लगा, और अपने सारे परिवार और दोस्तों को वो लेके आया था और उसमें स्विमिंग कर रहा था। तो स्विमिंग करते करते इतने, कैसे हम भी कई बार देखते हैं स्विमिंग पूल में जाते तो बड़ा छटपटाते हैं, पानी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करते करते वहां के जानवरों को डिस्टर्ब कर रहा था। और भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि वो अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नियों को देख के इतना खुश हो रहा था कि अपने सूंड में पानी लेके उनके ऊपर छांट रहा था। और भागवतम ये बताता है कि उसमें उसे बड़ा कष्ट हो रहा था लेकिन फिर भी वो कर रहा था। तो कई बार ऐसा कार्य हम करते हैं जिसमें हमको बहुत कष्ट होता है लेकिन फिर भी दूसरों को खुश करने के लिए हम इस तरह का कार्य करते हैं। तो वो वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था और जो जानवर उससे डिस्टर्ब हो गए थे उसमें से एक जानवर था मगरमच्छ, घड़ियाल। उस घड़ियाल ने आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया जोर से, तो इस एपिसोड से हमको ये भी एक शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी मदांध होकर धन वैभव लेकर और चलते जाएं ये सोचकर कि मैं दुनिया का राजा हूं और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि माया देवी उन्होंने अपने बहुत जगह मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ आके हमको पकड़ेंगे। जैसे एक बार महाराज बता रहे थे दैट वी आर ऑल इन द जॉस ऑफ क्रोकोडाइल, इट इज ओनली द क्वेश्चन व्हेन ही क्लोजेस हिज माउथ। तो उस मगरमच्छ ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया। अब बताते हैं कि जो राजा इंद्रद्युम्न ये जो थे, जो गजेंद्र, ये बहुत शक्तिशाली बहुत पावरफुल थे, इनके सामने शेर चीते भी कुछ नहीं कर पाते थे, तो मगरमच्छ को तो सिर्फ एक लात में पछाड़ देते थे। लेकिन मगरमच्छ क्योंकि पानी के अंदर था और हाथी जो है वो थल का प्राणी है, जल का प्राणी नहीं है, थल अर्थात धरती जमीन, तो वो जमीन का प्राणी होने की वजह से इतना उसकी शक्ति नहीं हो पा रही थी, और अगर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो उसी क्षण मर जाता था, मगरमच्छ उसको खींच लेता था। पर क्योंकि गजेंद्र इतने शक्तिशाली थे वो उनसे लड़ते रहे, और किसी को पता है कितने साल लड़े वो? 1000 वर्ष। कौन से? हमारे देवताओं के, स्वर्गीय 1000 साल तक वो लड़ते रहे। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, और प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि मगरमच्छ अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, इसी हाथी अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं था, वो पानी के अंदर था, इसलिए मगरमच्छ उसको पकड़ पाया। और 1000 वर्ष तक युद्ध करने पर क्या हो रहा था कि गजेंद्र की जो शक्ति थी वो क्षीण हो रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और मगरमच्छ की जो शक्ति थी वो बढ़ रही थी। हम इस लीला में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लोग जानते हैं इस लीला को, बहुत बार हमने सुना है, पर मगरमच्छ को ज्यादा शक्ति मिल रही थी और गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही थी। तो जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तब हम भगवान की ओर भागते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च हरदर्शन। बताते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान बताते हैं मेरी शरण में आते हैं, आर्त अर्थार्थ अर्थार्थ जिज्ञासी एवं ज्ञानी, ये चार लोग। तो एक बार एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इस जीवन में यहाँ पर इस भौतिक संसार में केवल चार प्रकार के लोग आते भगवान के शरण में, कौन? आर्तो 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 और आर्तो, मतलब ओनली जो दुखी है वही आता है। दुख से हम भगवान की शरण लेते हैं, कई बार हम खुशी से भगवान की शरण नहीं लेते, कई ऐसे हैं लोग जो खुशी से भगवान की शरण लेते हैं, पर हम कई बार दुख में आके भगवान की शरण लेते हैं। तो गजेंद्र भी बड़ा दुखी हो रहा था, आर्तो ही वॉज इन दैट कैटेगरी, तो बड़े दुखी होके, और जब उसने कहीं पर कुछ मदद नहीं पाई, पहले तो उसने देखा कि पहले खुद फाइट करने लगा, फिर उसके मित्र लोग सोचे कि हम लोग इसको बचा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए, उनकी पत्नियां उनको नहीं बचा पाई, तो सब चिल्ला के रोध होके सब चले गए, टू कट इट शॉर्ट सब चले गए। तो गजेंद्र सोचने लगा कि अरे मेरे जीवन का क्या लाभ है, ये मेरे सारे लोग जिनको प्रभुपाद ने एक्चुअली एक पर्पट में लिखा इन फैलिएबल सोल्जर्स, इन फैलिएबल भगवान को बोलते हैं, फैलिएबल सोल्जर्स मतलब ये जो सारे सेनानी है मेरे जो गिरने वाले हैं, ये मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जो भी है मित्र, वो सब गिरने वाले हैं। तो फैलिएबल सोल्जर से वो कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उसने दुखी होके भगवान हरि को आवाज लगाई, और क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में भक्ति की थी उसे वो प्रार्थना याद आई जो उसने पिछले जीवन में की थी। सो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति, जो भक्ति के जो जो शक्ति है वो ये है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बताते हैं कि इस पथ पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति महान से महान भय से आपकी रक्षा करती है। तो हाथी उस जन्म में भक्त नहीं था, गजेंद्र वॉज नॉट ए डिवोटी बट ही वॉज डिवोटी इन हिज प्रीवियस जन्म। तो क्योंकि उसने भक्ति की थी तो उस भक्ति की वजह से उसे वो प्रार्थना याद आई और वो भगवान की तरफ प्रार्थना करने लगे। तो बताते हैं कि ये जो प्रार्थनाएं हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं, इसमें से सिर्फ हम एक श्लोक आज लेंगे, और क्योंकि अभी समय नहीं है तो हम रिपीटेशन में नहीं जाएंगे। पर वो भगवान की ओर देखकर एक्चुअली बताते हैं गजेंद्र की जो प्रार्थना है उसमें डायरेक्ट उसने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी को ऐसा नहीं कहा था कि मुझे बचाओ, वो इनडायरेक्ट प्रार्थना कर रहा था। और उसकी इनडायरेक्ट प्रार्थना में कई प्रार्थनाएं आती है जिसमें वो जैसे एक उसमें बोलता है न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाय तान्यन काल मृक्षति। वो कहने लगा कि भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूप से भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं, अतएव वे परब्रह्म है और मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से प्रार्थना करते करते वह इस प्रार्थना पे आते हैं जो श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद 3रा अध्याय का 17वां श्लोक है, इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय सांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतनु भृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त भगवान की शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देवधारी जीवों के हृदयों में स्थित है। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है और आप असीम है। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो अब यहाँ पर गजेंद्र जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ही इज एड्रेसिंग हिमसेल्फ एज पशु, पशुपाश, मातृ प्रपन्न पशुपाश। वो कहता है कि मैं जो हूँ पशु हूँ। तो पशु अर्थात जानवर, और जानवर में भी कौन है? हाथी। बताते हैं कि हाथी जो है उसका शरीर बहुत भारी होता है, अर्थात जो आवरण है आत्मा पर वो बहुत भारी है, बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है कि एक तो मैं पशु हूँ, हाथी हूँ, मेरा आवरण बहुत गहरा है और उसमें भी पाश, पाश मतलब फंदा, उसमें भी ये मगरमच्छ का फंदा मेरे पे पड़ा है। तो ये फंदा मेरे पे पड़ा है और विमोक्षणाय, मेरी कुछ इच्छा है, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? विमोक्षणाय, मोक्ष मतलब होता है मुक्ति, विमोक्षणाय होता है विशेष मुक्ति या भक्ति भी कह सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति की कामना करता हूँ, विमोक्षणाय। और फिर भगवान को वो एड्रेस करता है और क्या कहता है? मुक्ताय। सो सबसे पहले जैसे मान लो कि गजेंद्र और भगवान में वार्तालाप चल रहा है, सोच लो ऐसा हो रहा है कि the Lord is talking with Gajendra and there is a conversation going on and Gajendra is saying that you are Muktai, aap Muktai ho.
To Muktai ka arth kya hai?
To Bhagwan usko bolenge ki acha tujhe mukti chahiye, vimokshana hai, par tujhe mukt kyun karu, tune mere mein aisa kya gun dekhe? To ye Bhagwan keh rahe hain Gajendra ko. To Gajendra keh rahe hain ki Bhagwan aap Muktai hain.
Muktai ka arth hai ki aap mukt hai.
अब जो व्यक्ति मुक्त है वही किसी बंधे हुए व्यक्ति को छुड़ा सकता है, है कि नहीं? कोई बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को छुड़ा सकता है क्या? जैसे दो कैदी है, तो दो कैदी जेल में आपस में बात करते हैं कि यार आज मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता,
क्योंकि वो खुद बद्ध है, वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा? तो मुक्त होने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए? मुक्ताय होना चाहिए. जो व्यक्ति है वो फ्री होना चाहिए, ही शुड नॉट बी इन बॉन्डेज. तो अगर वो मुक्त है तो किसी को मुक्त कर पाएगा, किसी बद्ध जगह को मुक्त करेगा. तो कहते हैं कि हे भगवान आप मुकुंद हो, आप मुक्ति दाता हो, आप मुक्त हो और इसीलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हो और इसीलिए मैं आपके चरणों पर यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मुक्ति दिलाओ. क्योंकि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुदेव न संशय, कि भगवान विष्णु जो है वो मुकुंद है, भगवान कृष्ण वही सिर्फ मुक्ति प्रदान कर सकते हैं. तो ये मुद्दा समझना बहुत आवश्यक है कि मैं किसके पास जाऊं, मुझे कहां जाना चाहिए. जैसे हम अगर बद्ध अवस्था में है, जो कि हम है, अभी हम शरीर नहीं, हम आत्मा ऐसा कहते हैं, लेकिन इस शरीर में फंसे हुए हैं, आई एम कंडीशन सोल, आई एम बॉन्डेज, तो मेरे को पता होना चाहिए किसके पास जाना चाहिए. नहीं तो अगर हमको पता नहीं है कि कहां जाना है, जैसे everyone is seeking protection, everyone is seeking success, but we don't have knowledge that where to go. Like for example, if our house is on fire, what should we do? Okay, we call fire brigade. That is what is the answer. अगर हमारे घर में आग लगी है और हम fire brigade का number नहीं जानते हैं, grocery में phone कर रहे हैं और grocery वालों को बोलते हैं रे मेरे घर पे आग लगी है, कुछ करो कुछ करो, तो ग्रोसरी वाला बोलेगा यार मैं क्या करूं, केरोसिन भेजूं क्या? ग्रोसरी में केरोसिन नहीं मिलता. तो अगर हमारे घर में आग लगी और ग्रोसरी को फोन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. या कार में पेट्रोल खत्म हो गया है और होटल में फोन कर रहे हैं और बोलते हैं कि अरे मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया, होटल वाला बोलेगा मिल्क भेजूं क्या, दूध भेजूं क्या? तो हमको पता होना चाहिए कौन से कार्य के लिए कहां पर जाना है. जैसे जो मैं प्रश्न के भी बात कर रहा था वो मैंने छोड़ दी थी बीच में, कि जब हम जैसे उसने प्रश्न पूछा था दूध का भी सागर होता है, तो प्रश्न पूछने के लिए भी प्रॉपर जगह पे जाके प्रश्न पूछना चाहिए और प्रॉपर प्रश्न पूछना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ कैसा. ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि चलो क्वेश्चन आंसर सेशन है तो आज मैं पूछूंगा कुछ भी जो मेरे मन में है. ऐसा नहीं है. तो एक बार भक्तों ने, चौपाटी के भक्तों ने कुंभ मेले में एक स्टॉल लगाया, पर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर. तो एक आदमी जाके पूछने लगा अरे प्रभु जी मेरा बटुआ खो गया कहाँ मिलेगा? तो प्रभु जी बोले यार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, यहाँ पर उस क्वेश्चन का जवाब मिलता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है. ये प्रश्न जाके पुलिस स्टेशन में पूछो, वो बताएंगे बटुआ किधर मिलेगा. और यही पुलिस स्टेशन में जाके मैं बोलूँ पुलिस को कि बताओ मैं कौन हूँ, तो बोलेगा रुक पहले मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, अंदर लेके जाता हूँ फिर बताता हूँ. तो प्रश्न कहाँ पे क्या पूछना चाहिए इस सब का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं मिलती. तो बोलते हैं कि आप मुकुंद हो, आप मुक्त हो, इसलिए मुझे मुक्त करो. तो भगवान करेंगे अच्छा ठीक है. लेकिन एक और चीज है कि ये जो हम ये चीज जानते हैं कि जो मुक्त है वही बंधे हुए व्यक्ति को छोड़ सकता है, ठीक है? कोई बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को छोड़ सकता है? There is one contradictory example in the scriptures. दामोदर, very good. दामोदर लीला में भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान ने बंधे हुए व्यक्तियों को मुक्त कराया. किनको? नल कुबेर और मणिग्रीव को. वो भी बंधे हुए थे, भगवान भी बंधे हुए थे, लेकिन भगवान की इतनी शक्ति है कि बंधे हुए होने के बाद भी द लॉर्ड वॉज बाउंड बाय द रोप ऑफ मदर यशोदा एंड ही रिलीज नल कुबेर एंड मणिग्रीव. तो उनको उनको मुक्त किया. तो भगवान ही सिर्फ ये कर सकते हैं कि बंधे हुए होने के बाद भी बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं. तो बताते हैं कि जब उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को मुक्त कर दिया तो नल कुंवर और मणिग्रह को थोड़ी शर्म आई और बोलने लगे, अरे भगवान आपने हमारे को तो मुक्त कर दिया लेकिन आप तो बंधे हुए हो, क्या करें। भगवान ने कहा अच्छा क्या करना चाहते हो बोलो। बोले आपको मुक्त करना चाहते हैं। बोले ठीक है करो कोशिश करो। तो गए मुक्त करने के लिए, पर क्या मुक्त कर पाए? नहीं, वो भगवान को मुक्त नहीं कर पाए। अरे बलराम जी स्वयं भगवान को मुक्त नहीं कर पाए। जब भगवान को बांध दिया मैया यशोदा ने तो सब सखागण आ गए उधर। बोले कि अरे ये हमारा लीडर तो बंध गया। तो भगवान ने कहा कुछ करो यार। तो बलराम कहने लगे कि मैं जाके मैया को बोलता हूँ कि आप कौन है, शायद मैया नहीं जानती आप कौन है। भगवान बोले बताओ। तो बलराम जाके बोलने लगे मैया को, यशोदा को। बोला अरे मैया तुम्हें पता है कृष्ण कौन है? मैया बोली कौन है? अरे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, वो सभी कारणों के कारण है, वो गोविंद है, वो परम पुरुष है, वो ये है वो है, ऐसा करके बताने लगे। तो मैया ने एकदम हाथ फाड़ के देखने लगी। बोले अच्छा तो तू कौन है? बोला अरे मैं बलराम हूँ, मैं भगवान का पहला एक्सपेंशन हूँ, बाकी सभी एक्सपेंशन मुझी से आते हैं। मैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव ये हूँ वो हूँ, संकर्षण हूँ मैं, ओरिजिनल संकर्षण हूँ, सारे अवतार मुझे से जन्म लेते हैं। तो मैया उसको देख के बोलने लगी अच्छा क्या सारे के सारे अवतारों को मेरे घर में ही जन्म लेना था क्या? बोला भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे को भी बांध दूंगी। तो जाके बलराम बोलने लगे कृष्ण से कि यार ट्राई किया सफलता हाथ नहीं लगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आई जस्ट वॉन्ट योर एंडेवर, आई डोंट वॉन्ट सक्सेस। तो बोले कि मैं अपने आप को देख लूंगा। तो बोले बलराम जी भी मुक्त नहीं कर सके भगवान को, तो ये जो प्रेम का रज्जु है जो यशोदा मैया ने बांधा था उसको कोई तोड़ नहीं सकता, पर भगवान बद्ध होते हुए भी बद्ध जीवों का उद्धार कर सकते हैं। तो गजेंद्र कहने लगे कि आप बद्ध होते हुए भी उद्धार कर सकते हो तो आप तो मुक्ताय हो, क्यों आप मेरा उद्धार नहीं करोगे? जरूर करोगे। तो भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है गजेंद्र, मुक्ताय तो मैं हूं, पर क्या इतना काफी है तुझे मुक्त करने के लिए? क्या इतना, क्या एक एक क्वालिटी काफी है, क्या एक गुण काफी है ये तुझे मुक्त करने के लिए? डज ओनली वन क्वालिटी इनफ टू गेट यू रिलीज? जैसे जेल के अंदर कैदी लोग बद्ध होते हैं और मुक्त कौन होता है? जेलर। जेलर मुक्त होता है। तो जेलर क्या बद्ध जीवों को, कैदियों को मुक्त कर देता है क्या? क्या एक एक गुण काफी है क्या कि हाँ चलो? तो दूसरा गुण बता रहा है गजेंद्र कि आप सिर्फ मुक्त नहीं हो, आप कौन हो? भूरी करुणा है। कि आप, आपके अंदर भूरी भूरी करुणा है। तो बताते हैं कि मुक्त करने के लिए आदमी के पास दिल भी होना चाहिए, कि इतने लोगों को जो बंदी बना के रखा है उसमें करुणा होनी चाहिए। और गजेंद्र क्या कह रहा है कि आप में सिर्फ करुणा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में करुणा हो सकती है, वो तो कहते हैं कि भूरी करुणा है, कि आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है। कितनी ज्यादा? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। बताते हैं कि करुणा सिंधु, आप सिंधु हो, सिंधु मतलब समुद्र सागर। तो बताते हैं कि आप में इतनी करुणा है जितना के सागर में जल है। अभी कोई नाप सकता है सागर में कितना जल है, कितना लीटर पानी है? कोई मशीन बनी है ऐसी, कोई टेक्निक है, वैज्ञानिक इतना बड़ा बड़ा बोलबाला करते हैं, नाप सकते हैं क्या जल को? कि पूरा समुद्र इस दुनिया का माप ले। तो बताते हैं कि सोचो अगर कोई समुद्र का पानी माप भी ले, लेकिन भगवान की जो करुणा है उसको कोई माप नहीं सकता। तो बताते हैं उससे ज्यादा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो वो उसको माप नहीं सकता। तो बताते हैं कि भगवान की इतनी करुणा है, और करुणा का क्या एग्जांपल है? कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे कि भगवान ने करुणा की है लोगों पर? वेरी गुड। और बहुत बहुत सारे एग्जांपल है बोलने बैठे तो बहुत, लेकिन एक जो स्ट्राइकिंग एग्जांपल है जो माता जी ने कहा पूतना का, जो लास्ट टाइम कहा था हो बकीयम स्तन काल पूतम, कि पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, और भगवान कितने दिन के बालक थे उस समय को जानता है? हाँ ऐसा बोलोगे तो 3-4-5-6 दिन, भगवान 6 दिन के बालक थे, इसलिए रोका मैंने। भगवान 6 दिन के बालक थे, और उस 6 दिन के बालक को पूतना मारने के लिए आई। अब बताते हैं कि बच्चों की तरफ तो स्वाभाविक प्यार होता है, कि बच्चों को देखकर कोई भी किसी को करुणा आ सकती है, पर उस पूतना को करुणा नहीं आई। तो बताते हैं पूतना बाहर से बहुत अच्छी दिख रही थी, वेरी अट्रैक्टिव, पर अंदर विष भरा हुआ था उसके। तो वो भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसका उद्धार कर दिया, उसको धात्री का पद दिया। धात्री मतलब नर्स, आया उसका हमारे बीच में है, तो धात्री का स्थान दिया उसको। तो बताते हैं भगवान इतना है, और इसीलिए कहते हैं अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघम सयाया प्रयया दपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री चितम तमोन्यम किंवा दयालुम शरणम व्रजेमा किंवा दयालुम शरणम व्रजेमा। बोलते कि मैं किसकी शरण में जाऊं, कौन इससे ज्यादा दयालु और करुणामय होगा जो भगवान से, कि जो उसको मारने के लिए आई उसको मुक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। तो बताते हैं कि ये भी जानते हुए, ऐसा नहीं था कि भगवान जानते नहीं थे कि पूतना क्या करने आई है, बताते कि जानते हुए भी अगर कोई मारने के लिए आया है तो आप उसको मुक्त कर देते तो आप मेरे को क्यों नहीं मुक्त करोगे। तो ये सेकंड पॉइंट बोला किसने, गजेंद्र ने, किसको, भगवान को, कि भाई भगवान आप मुक्ताए हो और आप भूरी करुणाए हो। तो भगवान कहेंगे ठीक है चलो ये भी माना मैंने कि मैं भूरी करुणाए हूं, लेकिन अभी इतने दूर से मेरे को आना पड़ेगा और इतने दूर से आने में अगर मेरे को आलस्य आ गया तो क्या होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि अललाय, ललाय मतलब, ललाय मतलब होता आलस्य, अललाय मतलब होता कि हे भगवान भूरी करुणाए नमो अललाय, अललाय मतलब आप में। तो बताते कि आलस्य जो है ये एक मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। बहुत सारी चीजों में हमको आलस्य आता है, सबसे पहला आलस्य आता है उठने में सुबह उठने में बहुत बड़ा आलस्य आता है, उठने को नहीं होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो आलस्य एक दुर्गुण है, तो उठने में आलस्य आता है, फिर जप करने में आलस्य आता है, प्रोग्राम में आने के लिए आलस्य आता है कल एक बहुत सीनियर डिवोटी से मैं बात कर रहा था और यही चर्चा चल रही थी कि हमारा प्रोग्राम का जो टाइम है तो मैंने कहा छोड़ो मैं क्या कहूँ इसके बारे में। तो आलस्य की पराकाष्ठा क्या है कि कभी कभी हमको सोने में भी आलस्य आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर उसका टॉपिक है BBMA। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा मैंने कहा ये BBMA मतलब क्या है। तो बताता कि दो आलसी लोग सोते रहते हैं अपने कुटिया के अंदर और अचानक आग लग जाती है। तो आग लगती है तो एक आलसी के पीठ में थोड़ा जलने लगता है, तो वो उसको बोलता है बीबी मतलब बैक बर्निंग, मेरी पीठ जल रही है बैक बर्निंग, पर इतना आलस होता है कि पूरा नहीं बोलता है बीबी। तो दूसरा बोलता है MA मतलब मूव असाइड मूव असाइड, बाजू हट जा थोड़ा इधर चला जा, तो इतना आलस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हम इस संसार के अंदर जल रहे हैं और जलते हुए भी बाहर निकलने के लिए हमारे को बहुत आलस्य आ रहा है, हमको लगता है नहीं इधर ही ठीक हूँ, थोड़ा सो तो रहा हूँ कम से कम, जल रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है। तो हम लोग जल रहे हैं लेकिन फिर भी सोना चाहते हैं, जगना नहीं चाहते, और इसके लिए कहा कि उठो और भागो युद्ध करो। तो बताते हैं कि भगवान को आलस्य नहीं है, और उसका एग्जाम्पल गजेंद्र लीला में ही है कि गजेंद्र ने भगवान का नाम भी नहीं लिया था और भगवान उसको बचाने के लिए आ गए। और बताते हैं कि जब भगवान आ रहे थे तो इतनी स्पीड के साथ आ रहे थे क्योंकि तुरंत आना था उनको, तो गरुड़ जी की स्पीड भी कम पड़ गई एक्चुअली, उन्होंने अपना क्विज कंट्रोल लगा के रखा था लेकिन चला नहीं वो। और जब भगवान ने और बोला एक्सीलेटर दबाया बहुत जोर से तो गरुड़ जी बेहोश हो गए, गरुड़ जी और ज्यादा जान खा, तो भगवान ने सोचा ले ओ भाई अभी तो दो दो जन को बचाना पड़ेगा, एक तो गजेंद्र को बचाना है अभी गरुड़ को भी अभी इसको भी। तो भगवान ने क्या किया, मैंने सुना एक लेक्चर में एक भक्त से कि उन्होंने गरुड़ जी को अपने कंधे पे उठा लिया और हवा करने लगे उसको और भागने लगे। तो भगवान जब भाग रहे थे तो दो हाथ से गरुड़ को संभाल रहे थे और उनकी धोती इधर उधर उड़ रही थी तो दो हाथ से धोती को पकड़ा, तो पूरे चारों हाथों का प्रयोग किया भगवान ने संभाल के और भागने लगे भगवान। तो बोले गरुड़ तेरी स्पीड भी कम है, उसकी गाड़ी रिजर्व में आ गई थी, तो उसको भगवान लेके उड़े एक्चुअली और वहां पे पहुंचे। तो बताया कि भगवान, और जब हमारे ब्रजराज प्रभु इधर आए थे तो उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था किसका, याद है, द्रौपदी का। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने पूरा गोविंद भी नहीं कहा था जब भगवान को पुकारा, सिर्फ गो कहा था, गो गोविंद, गो कहते ही भगवान उधर आ गए। तो बताते भगवान कभी आलस्य नहीं करते, किसी को भी बचाने के लिए भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। तो भगवान अललाय हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है चलो मैं अललाय भी हूं मान लिया, लेकिन मैं तो बहुत दूर बैठा हूं वैकुंठ के अंदर, इधर कैसे हूं त्रिकुट पर्वत में, बहुत दूर है, बहुत दूरी है एक्चुअली। तो वो कहते हैं नहीं, स्वामसेन सर्व तनु भी मनुष्य प्रतीत, कि आप स्वाम से तनु वृत्त, कि आप तुरंत आप सब जगह विद्यमान हो, आप तुरंत आ सकते हो क्योंकि आप हृदय में भी विद्यमान हो, तो आप कहीं से भी आ सकते हो, आपको आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बताते हैं कि भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो एक कैमरे के समान है ना, भगवान कैमरे में से सब देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि हर चीज से हम छुप सकते हैं लेकिन परमात्मा से नहीं छुप सकते। बाहर जो कुछ भी हो रहा है सूर्य उसका साक्षी है, और अंदर जो भी हो रहा है वायु उसका साक्षी है, और ओवरऑल परमात्मा उसका साक्षी है। तो हम सोचे कि अकेले में मैं कोई भी कार्य करूं किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, भगवान देख रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया की नजर से बच जाते हैं लेकिन भगवान की नजर से नहीं बच सकते। जैसे एक जो ड्यूटी थे वो बता रहे थे कि एक बार वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी चेक में जाना पड़ता है। तो सिक्योरिटी चेक में क्या होता है, मशीनें लगी रहती है, उसमें से निकल जाओ बाहर। एक ड्यूटी बता रहे थे कि लंदन में वो हाथ से चेक नहीं करते, आप मशीन में से बाहर निकलो सब कुछ मशीन देख लेता आपके अंदर क्या है, क्या छुपा के रखा है। तो बताने लगे कि मशीन किस तरह से देख रही है। तो उस भक्त ने पूछा, अच्छा बताओ। तो देखा पूरा पूरा स्केलेटन दिख रहा है कि कोई हीरा कुछ छुपा के तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा हृदय में क्या वो दिखता है क्या, तो बोला ना अभी तक ऐसी मशीन नहीं बनी है। तो हर चीज को आप देख सकते हो लेकिन आपके हृदय में क्या है वो नहीं दिखाई देगा, उसको सिर्फ भगवान देख सकते हैं। क्यों क्यों? बिकॉज ही इज सीटेड इन द हार्ट। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं भगवान बोलता है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, इसके लिए हृदय के अंदर वो देख सकते हैं। तो हमारे हृदय में जितनी भी कालिक है वो दूसरों को भले ही नहीं दिखे लेकिन भगवान को जरूर दिखती है। इसलिए एक बार आदि गोपीनाथ प्रभु अपने लेक्चर में बोल रहे थे दैट ए ब्लैक एंट ऑन ए ब्लैक रॉक इन ए डार्क नाइट नो वन सीज बट गॉड सीज। ए ब्लैक एंट ऑन ए ब्लैक रॉक इन ए डार्क नाइट नो वन सीज बट गॉड सीज। तो वो ले लेते हैं। तो भगवान कहेंगे ठीक है चलो यार इतना सब भी कुछ है लेकिन मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तेरे को बचा पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि भगवते आप कौन हो, आप भगवान हो, आप सर्वैश्वर्य पूर्ण हो और आप सभी ऐश्वर्य से युक्त हो, और बृहते बृहते मतलब आप शक्तिशाली हो, असीम शक्ति। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं असीम, तो बताते हैं कि आप भगवते और आप बृहते हो, आप असीम हो। तो कहते हैं कि आप अब आओ और मुझे बचाओ। तो इस तरह का एक एक करके जो गजेंद्र है वो भगवान के सामने अपनी पिटिशन रख रहा है और भगवान कहते जा रहे ठीक है चलो अप्रूव 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 नो ये सब चीज अप्रूव किया। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं, वह कहते हैं कि हम सबकी भी ऐसी ही स्थिति है जैसे कि गजेंद्र की थी। क्यों, कोई बता सकता है क्यों हमारी स्थिति गजेंद्र की स्थिति के जैसी है? कैसे?
भगवान को जब याद करते हैं जब अपन प्रॉब्लम में,
दैट इज वन थिंग। बट प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी स्थिति भी वैसी ही है क्योंकि हम इग्नोरेंस अज्ञान जो है उससे बंधे हुए हैं, अज्ञान के पाश से बंधे हुए हैं। और हालांकि अपने आप को मनुष्य कहते हैं फिर भी पशुवत है। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयेतत् पशुभिः नराणाम्। हमारे में संचार वो एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी करते हैं और हमारे में अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण हम पशुपाश उस पाश में बंधे हुए हैं। तो उस अवस्था से हमें बाहर निकलना है, उस अवस्था से हमें मुक्त होना है। तो गजेंद्र की कथा सुनकर हमें समझ लेना चाहिए कि हमें इस अहंकार के पाश से मुक्त होना है, जिस तरह से गजेंद्र अपने मगर के पाश से मुक्त होना चाहता था। और गजेंद्र के पास बहुत सारी शक्ति थी, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। गजेंद्र के पास इतनी शक्ति थी कि वो लड़ता रहा 1000 साल तक, लेकिन अगर हमारे पास अगर मृत्यु आएगी तो हम कितनी देर लड़ पाएंगे? कई बार हम जाके ICU में एडमिट हो जाते हैं, कितनी देर तक लड़ पाएंगे? अगर मौत आ गई है तो उसी क्षण जाना पड़ेगा, 1000 साल हमारे पास नहीं है, दूसरे क्षण क्या होगा? तो बताते हैं कि इतना गजेंद्र के पास भक्ति और शक्ति दोनों थी। पिछले जन्म में उसने भक्ति की थी, हमारे को मालूम नहीं हमने क्या किया था पिछले जन्म में, हम लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है। तो बताते हैं कि गजेंद्र को मुक्ति मिली और भगवान ने आके उस घड़ियाल का सिर काटा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि घड़ियाल ने आक्रमण किया। घड़ियाल के दो मतलब होते हैं, एक घड़ियाल होता है मगरमच्छ और एक घड़ियाल होता है घड़ी समय टाइम। तो टाइम हमारे पे अटैक कर रहा है बार बार आके, और एक एक क्षण हमारा वो काटते जा रहा है और हमको मृत्यु के पास लेके जा रहा है। तो बताते हैं कि इसमें एक और मुद्दा है जो हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, 5 मिनट में खत्म करने का आदेश मिला है। तो कि भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, भगवान आए दोनों को बाहर खींचा लेके आए और फिर उन्होंने जो मगरमच्छ है उसका सिर काट दिया। तो बताते हैं कि गजेंद्र के पहले मुक्ति किसको मिली, मगरमच्छ को। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ को पहले काटा भगवान ने, उसको पहले मारा, और उसको सिर्फ काटा ही नहीं, उसको सुदर्शन का स्पर्श भी मिला ना? भगवान का एक बहुत नित्य पार्षद है सुदर्शन, और उसका एसोसिएशन मिला, ही गॉट द एसोसिएशन ऑफ सुदर्शन आल्सो। तो ऐसा क्यों हुआ? और तो हमको क्या करना चाहिए? पर मगर की तरह बोले क्लास के बाद चलो एक दूसरे का पैर पकड़ते लोटस फीट। तो वैसे नहीं, हमें पैर पकड़ने का मतलब है कि हमें भक्तों का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। जो भक्त कहते हैं, भक्त अर्थात हमारे गुरु महाराज जो है और दूसरे जो भी है, सारे भक्त जो है उन सभी के आदेशों का पालन करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो हमको भगवान कृपा देंगे। तो इतनी कृपा उनको मिली क्योंकि उन्होंने जो एक शुद्ध भक्त है गजेंद्र, उसके उसके चरण को पकड़ा था। ही कॉट होल्ड ऑफ द लोटस फीट ऑफ गजेंद्र एंड देयर फॉर ही गॉट लिबरेटेड ऑल्सो। और मगरमच्छ अपने पहले के जमाने में कौन थे, नाम पता है किसी को? गंधर्व हुहु, देव ऋषि ने उनको साफ दिया था। एनीवे, तो उसको मुक्ति मिली। तो अभी इन कंक्लूजन हमको ये समझना है कि इस गजेंद्र की जो ये प्रार्थना है और ये जो एपिसोड है, इससे हमको ये समझना चाहिए कि माया देवी ने सब जगह पर अपने मगरमच्छ छोड़ के रखे हैं, और ये मगरमच्छ कभी भी आके हमको पकड़ सकता है। तो इसके पहले कि मगरमच्छ आके हमको पकड़े, हमको भगवान की शरण में जाना है। मगरमच्छ के आने का इंतजार नहीं करना है हमको, नहीं तो हम मगरमच्छ के आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद पता नहीं, हो सकता कि हमको वो याद नहीं आएगा। तो भगवान की पहले हमें शरण ग्रहण करनी है, और हमें भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए सबसे आसान मार्ग क्या बताया गया है, भगवान के शुद्ध नाम का स्मरण करना, जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह का अगर हम जाप करेंगे तो हम भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे, और ये जो माया देवी के मगरमच्छ है इससे हम छूटेंगे। तो अभी आप सोचो, ये स्थिति सोचो एक मिनट के लिए, जस्ट एक सेकंड के लिए, कि हम सभी को मगरमच्छ ने पकड़ के रखा है, और अगर मगरमच्छ ने पकड़ा है तो हम कैसे भगवान का जाप लेंगे, कितने जोर से लेंगे बताओ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब सोचो 500 साल हो गए हैं लड़ाई चल रही है, और 500 साल के बाद हम कैसे भगवान का नाम लेंगे, कैसे लेंगे बताओ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और सोचो युद्ध 1000 साल तक चल रहा है, 1000 साल हो गए और फिर भी अब तक भगवान नहीं आए, तो किस तरह से चिल्लाएंगे हम, ये इतना लाउड नहीं था बताओ। सोचो आप अगर 1000 साल तक मगरमच्छ ने पकड़ा तो कैसे चिल्लाएंगे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
क्या ऐसे चिल्लाएंगे क्या?
आप माइक में बोल रहे हैं
पर मैं अकेला हूँ, आप लोग कितने, 120। और आप सोचोगे कि इतना चिल्लाने के बाद भी भगवान तो आए नहीं है ना, क्यों? क्योंकि मगरमच्छ भी नहीं आया। अगर मगरमच्छ आता था तो फिर हम चिल्लाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मगरमच्छ के आने के पहले ही हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, और भगवान का नाम अगर हम इस भाव से लेंगे तो भगवान स्वयं आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। इतने के साथ ही मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि वगैरह हो रही होगी मेरे से तो कृपया मुझे माफ़ करना, और बाय चांस अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे भक्तों को और शिक्षा अष्टकम प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ के ये सब आपको बता रहा था। थैंक यू वेरी वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
गजेंद्र कल्याण की
जय।
निताई गौर प्रेमानंद की।